समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम परिक्रमा में। आज के अंक को शुरू करने से पहले हमारी ओर से आप सभी को भाई दूज की बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के सुंदर रिश्ते को दिखाता है, उसी तरह भाई दूज भी भाई बहनों के रिश्ते को समर्पित है। भाई दूज का त्यौहार दिवाली के पांचवें दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और आज के अवसर पर हम भी यही कामना कर रहे हैं कि सभी भाई बहनों का रिश्ता खूबसूरत बना रहे और सभी को खुशियों का तोहफा मिले। इसके साथ ही शुरुआत कर रहे हैं परिक्रमा के आज के अंक की, जिसमें आप जुड़ चुके हैं सरफिरोजी और अनीता आनंद के साथ। नमस्कार अनीता।
नमस्कार सरफिरोजी। ग्रीटिंग्स टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन द ओकेजन ऑफ भाई दूज। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM एंड एज ऑलवेज फॉर ऑल ऑफ यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल, ट्रिब्यूट्स and much more. All this over the next 30 minutes and we begin with the news headlines first.
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने और जनजातियों को इससे बाहर रखने का वादा किया।
External Affairs Minister S. Jaishankar arrives in Brisbane on a 6-day visit to Australia and Singapore from today.
भारतीय रेलवे छठ पूजा के दौरान सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 145 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है।
मेट डिपार्टमेंट फोरकास्ट हेवी रेनफॉल विद थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग ओवर तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड केरला टुडे।
न्यूजीलैंड ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 25 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से जीती।
एंड इन बैडमिंटन, मालविका बंसोर टू क्लैश विद मिया ब्लिटफेल्ड इन द फाइनल ऑफ हाइलो ओपन इन जर्मनी। And time now for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global levels. Today, we will talk about the International Day for Biosphere Reserves. Today is the International Day for Biosphere Reserves. It is observed across the world to highlight the importance of biosphere reserves in protecting the environment and raising awareness about the sustainable development. The International Day for Biosphere Reserves is an invitation to take inspiration from the solutions already implemented in several countries to build genuinely sustainable development everywhere with full respect for nature and for the living world. It was proclaimed by the UNESCO General Conference in its 41st session. UNESCO has approved the designation of 11 new biosphere reserves in 11 countries, with these new biosphere reserves covering a total area of biosphere reserves now totals 759 sites in 136 countries. Biosphere reserves aid in achieving the goals established by states following the adoption of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework in December 2022. And these goals include restoring 30% of the planet's degraded ecosystems by the year 2030 and designating 30% of the land and marine surface as protected areas.
जी अनीता, और देखा जाए तो हर गुजरते साल के साथ पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने की जरूरत और साफ होती जा रही है। हमारे पास सिर्फ एक दुनिया है और वो खतरे में आ चुकी है। जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है कि कई जीव जंतु जो हैं वो इन परिवर्तनों के हिसाब से खुद को ढाल ही नहीं पा रहे हैं और वो लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। और वहीं पेड़ों की लगातार कटाई भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण और लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण भी धरती को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही हमें संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही संसाधनों का एक तरह से शोषण किया जा रहा है अनीता, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल नहीं करते। हमें लगता है कि हम कितना भी इस्तेमाल कर लें, प्रकृति हमें ये सारे संसाधन फिर लौटा देगी। इस विचारधारा के कारण ही आज हमारा प्लैनेट खतरे में आ गया है। और अनीता, यही समय है जब हम सोचें कि हम एक ऐसी दुनिया बनानी है जिस पर सबका हक हो, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी का भी संसाधनों पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा, और हमें ऐसी दुनिया बनानी है जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि जहां प्रकृति को कम से कम नुकसान के साथ विकास हो। और बायोस्फीयर रिजर्व दिवस भी इन्हीं मुद्दों को उठाता है। ये हमारे पर्यावरण की सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में बायोस्फीयर रिजर्व के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालता है।
Correct. India has a rich tradition, Sir Firozi, of biodiversity conservation, which predates the global biodiversity movement and the establishment of the Convention on Biological Diversity. The journey towards formal biodiversity management began with the creation of the first National Biodiversity Strategy and Action Plan in the year 1999. Followed by the Global Environment Facility Project from 2000 to 2003, that fostered wider stakeholder engagement in biodiversity planning. This culminated in the National Biodiversity Action Plan in the year 2008, which was further refined in 2014 to align with the Aichi biodiversity targets established during the Convention on the Biological Diversity meeting in the year 2010.
पिछले सप्ताह भारत ने कोलंबिया के कैली में कॉप बैठक में अपना राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के बारे में बात करते समय संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज का दृष्टिकोण अपनाया। इसके लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क या KMGBF को प्राप्त करने के जैसे ही है। इस फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकना है।
And in this regard, Sir Firozi, we need to mention that the Centre has already taken several steps for the conservation of biodiversity, which includes survey, inventorization, taxonomic validation and threat assessment of floral and faunal resources. Other notable approaches are assessment to develop an accurate database for planning and monitoring, as well as conservation and protection of forests. Establishment of a protected area network of national parks and wildlife sanctuaries. The government is also implementing species-oriented programs like Project Tiger, Project Elephant and Project Dolphin.
जी बिल्कुल अनीता, और इसके अलावा जैव विविधता के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने और कई कदम उठाए हैं, जैसे कि कई जानवरों के शिकार पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके अलावा अगर एक चीज देखी जाए तो नमामि गंगे जो परियोजना है वो सरकार चला रही है, जिसके तहत गंगा नदी को साफ और संरक्षित रखने का लक्ष्य रखा गया है। पर अनीता, हमें ये भी मानना होगा कि सिर्फ सरकार के प्रयासों द्वारा हर चीज संभव नहीं होगी, हमें भी इसमें पूरा योगदान देना है। और भारत ने जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव किया है। इसके तहत अब 2030 तक भारत ने अपने जैव विविधता वाले 30% क्षेत्र, जिनमें जमीनी इलाके, जलीय क्षेत्र और तटीय समुद्री क्षेत्र भी शामिल होंगे, इन सभी को संरक्षित करने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता को महत्व दे रहा है। इससे जुड़े कार्यों में गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कई मंत्रालयों, राज्यों और हितधारकों को शामिल किया गया है।
एंड इंडियाज नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान रिफ्लेक्स सर फिरोजी अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न गवर्नेंस एंड कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजीज। द ऑनगोइंग अपडेट्स एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट अंडरस्कोर द कंट्रीज कमिटमेंट टू मेंटेनिंग इट्स रिच बायोडायवर्सिटी व्हाइल एड्रेसिंग कंटेम्पररी एनवायरमेंटल चैलेंजेस। Continued efforts in capacity building, resource mobilization, and effective monitoring will be critical in achieving the set biodiversity targets and also ensuring sustainable development for the future generations.
श्रोताओं, अब समय है कि आपको देश की परिक्रमा पर लेकर चला जाए और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जाने कि उनके पास हमारे लिए आज क्या खास जानकारी है। तो अनीता, कहाँ से शुरू कर रहे हैं?
विद द नेशनल कैपिटल ओनली, कैवरी मीट्स गंगा, द फर्स्ट प्रोग्राम अंडर द अमृत परंपरा सीरीज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन द कैपिटल न्यू दिल्ली। द मिनिस्ट्री हैज टेकन अप दिस इनिशिएटिव टू यूनाइट इंडिया थ्रू आर्ट एंड कल्चर। द प्रोग्राम स्टार्टेड यस्टरडे एंड विल कंटिन्यू till the 5th of this month. A report.
The four-day festival brings the best of dance and musical traditions from South India to North India and showcases artistic traditions in the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The event celebrates traditional arts and art forms of India with a special focus on declining and dying art forms and traditions across performing arts, visual arts and literature by curating innovative programs in traditional art forms with modern packaging and technology-based interactive and immersive experiences. The Amrit Parampara series has been designed to promote the continuity of India's cultural legacy through four key pillars: the foundation of Bharatiya Sanskriti, a blend of cultural education and entertainment, the synthesis of diverse ideas, and a multi-sensory experience. For Parikrama, Priya, Akashvani News, Delhi.
और अब आपको लेकर चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, जहां राजधानी ईटानगर में पिछले हफ्ते युमम कुम के नाम से एक अनोखी फ्ली मार्केट लगाई गई, जिसमें कई कलाकारों ने अपनी अनोखी कलाकृतियों के साथ सभी दर्शकों को आकर्षित किया। एक रिपोर्ट।
युमम कुम का चौथा संस्करण पिछले सप्ताह ईटानगर के चंद्रानगर में आयोजित किया गया था। युमम कुम एक फ्ली मार्केट यानी पिस्सू बाजार है। यह एक तरह का सड़क बाजार होता है, जहां विक्रेता विभिन्न प्रकार के सामान बेच सकते हैं, जिनमें खेल, प्राचीन वस्तुएं, फर्नीचर, कपड़े और अलग अलग तरह की वस्तुएं शामिल होते हैं। पिस्सू बाजार उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है जो पैसे बचाना चाहते हैं या अनोखी वस्तुएं ढूंढना चाहते हैं। युमम कुम एक निशी शब्द है जिसका अर्थ है सपनों का जमावड़ा। यह बाजार राज्य भर के स्वतंत्र और रचनात्मक कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है, जिनके पास अभी तक अपने व्यवसाय के लिए नियमित स्टोर नहीं है। यह बाजार कलाकारों को एक से एक बाजार उपलब्ध कराकर मदद करती है, जो ज्यादातर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सक्रिय हैं। संस्थापक लिंको एंजेस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस संस्करण में दो चरणों में कुल 52 कलाकारों ने भाग लिया। राजधानी क्षेत्र के विभिन्न युवा और स्वतंत्र कलाकारों ने अपने स्टॉल लगाए और अपनी कला का प्रदर्शन किया। युमम कुम की अवधारणा के बारे में जानकारी देते हुए लिंको ने कहा कि इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य युवा और स्वतंत्र रचनाकारों को समान विचारधारा वाले लोगों के साथ अपने विचारों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था।
तो युमम कुम इज अ वेरी लिटरल ट्रांसलेशन। युमम मींस ड्रीम्स एंड कुम इज अ गैदरिंग ऑफ ड्रीम्स। तो युमम कुम इज वी मी एंड माय पार्टनर ऑर्गेनायम वी स्टार्टेड दिस फेस्टिवल फॉर आर्टिस्ट फॉर इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हू डू नॉट हैव अ स्टोर or in the market as of yet, who participate only online so that they can have a physical interaction with their customers and for of course customers also to come and have a place to shop. Arunachal mein itna creatives hai, itna artists hai, to unke liye hum log kar sakta hai bolte, that's how we started. So aise abhi ye fourth edition hai, aap fifth bhi chalu hoga 1 tarikh se.
Mele mein har umar ke kharidaron ki achhi khasi sankhya dekhi gayi. Crystal stall se lekar mitti ke bartan banane tak ye flea market ek sundar mahol se mantramugdh tha. Parikrama ke liye राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
एंड नाउ वी गो ओवर टू लद्दाख। लद्दाख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफ अजान रिसेंटली विजिटेड आकाशवाणी करगिल। ही इंस्पेक्टेड द स्टेशन ऑपरेशंस एंड मेट विद एम्प्लॉइज टू डिस्कस देयर वर्क एंड चैलेंजेस। ही प्रेज्ड द स्टेशन इन कनेक्टिंग द रिमोट एंड वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन अक्रॉस 14,000 स्क्वायर किलोमीटर्स रीजन ऑफ करगिल सिंस 1977। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
MP Ladakh Haji Hanifa Jan commended Akashwani Kargil's impact through popular listener-focused programs like Purgi News, Yeh Kargil Hai, and Sotka Farmaish, which he mentioned he used to enjoy himself. He highlighted the station's 200 kilowatt medium wave capacity, which reaches approximately 20 lakh listeners, extending across the LOC into Gilgit-Baltistan and JNK-UT, showcasing its far-reaching influence and importance in the frontier region. The MP toured various sections of the station, including the MP studio, control room and news section, and later visited the 200 kilowatt high power transmitter at Kurbathang, Kargil. In an exclusive interview at Akashwani Kargil, Haji Hanifa Jan shared his vision for Ladakh over the next 5 years, discussing priorities like civil air service for Kargil, employment generation and ongoing development efforts. The visit underlined the importance of Akashwani Akashwani Kargil as a communication lifeline for Ladakh, especially in its commitment to connecting residents and addressing local issues through its programming. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
Aur ab baat Telangana ki, jahan Rajya Sarkar jati sarvekshan ke liye vyavasthaye kar rahi hai, jo is mahine ki 6 tarikh yani budhwar ko pure rajya mein shuru hoga. Is mamle par jald hi sarvdaliye baithak bhi hogi. Up mukhyamantri M. Bhatti Vikramark ne bataya ki राज्य के सभी 33 जिलों में जाति जनगणना की व्यवस्था को लेकर बैठकें हो रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जाति जनगणना शुरू की है. हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट.
Aiming at benefiting the socially and economically backward classes and targeted and equitable resource distribution among all communities, the Telangana state government has initiated the process of a comprehensive household caste survey in the state. With this, Telangana state will become the third state in the country that has taken up such survey after Andhra Pradesh and Bihar. It may be recalled that the ruling Congress party guaranteed for the caste census among others in the run-up to the assembly elections last year. As the government orders have been issued in this regard, the state planning department will be the nodal department for the survey, which is expected to be completed by this month end. About 90,000 enumerators overseen by over 12,000 supervisors will go to the doorsteps of each of 1.20 crore households in the state. The state government has also planned to extensively use technology for the listing of houses and collecting data by enumerators. Each enumerator is expected to visit 10 to 15 houses daily. During the last phase, the data collected will be verified and processed before submitting to the government. The number of questions likely to be over 50, as it is in the process of finalization. The Telangana state government's initiative for caste survey is expected to serve as a model for the rest of the country for such initiatives in the future, as it incorporated the best practices from the previous such surveys in Andhra Pradesh and Bihar states. Lakshmi for Parikrama from Hyderabad.
And now for some news from the defense sector.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के आत्मनिर्भर अभियान के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और वर्ष 2029-30 तक देश का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्षमता को विकसित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के सरकार के प्रयास पूर्ण रूप से सफल हो रहे हैं. 10 वर्ष पूर्व देश का रक्षा निर्यात लगभग 600 करोड़ रुपए का था, जो अब 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है.
And we now take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember the great but unsung freedom fighter, Sagar Mal Gopa, who was born on 3rd of November 1900 in the princely state of Jaisalmer, Rajasthan. Sagar Mal was the leader of the band Praja Mandal and inspired the people of Jaisalmer and adjoining areas to participate in the freedom struggle. Sagar Mal was also a part of Gandhiji's non-cooperation movement in 1921 and called on people of Jaisalmer to participate in the movement.
Sagar Mal's father, Akhyaraj, used to work in the court of Maharawal Jawahar Singh, the then ruler of Jaisalmer. During his youth, he noticed the indifferent attitude shown by his home state towards the freedom movement in British India. This troubled him greatly, and within him, slowly, grew a flame of passion for revolt. Jawahar Singh had prohibited the printing and reading of journals in the princely state.
Defying the Maharaja, Sagar Mal recorded the atrocities of Jawahar Singh in his book Jaisalmer Ka Gunda Raj and motivated the public to join the cause of freedom by publishing numerous books.
Sagar Mal fiercely opposed the anti-people policies of the ruler of Jaisalmer state, due to which the princely states of Jaisalmer and Hyderabad restricted his entry into their domains.
Sagar Mal migrated with his family to Nagpur, but when Akhyaraj died, Sagarmal returned to Jaisalmer to perform last rites of his father on 25th May 1941. Immediately, he was arrested on charges of treason and sentenced to rigorous imprisonment of 6 years. He was tortured in prison for years, and it is alleged that he was burned alive in prison. He died on 4th April 1946.
In 1986, the government of India issued a postage stamp in Sagarmal Gopa's honour. India is forever indebted to the selfless service and sacrifice of freedom fighters like him.
Today, we also remember freedom fighter and social activist Annapurna Maharana on her birth anniversary. She was born to Odisha's noted freedom fighters, Rama Devi and Gopabandhu Chaudhary, on 3rd November 1917. Annapurna joined the freedom struggle at an early age of only 14 years. She was an avid Gandhian and accompanied Gandhiji in his historic Harijan Padyatra from Puri to Bhadrak in 1934.
Annapurna organized the Shanti Sena and Maran Sena in the Bari area soon after the arrest and imprisonment of all well-known national leaders in the wake of the Quit India movement of 1942. She staged a protest along with a large number of villagers in September 1942 at Kalamatia in Cuttack district, where 4 persons were killed by police firing and several others were injured.
She protested against the imposition of punitive taxes at Bari and 3 other villages in the aftermath of Kalamatia firing. She was detained in the Cuttack jail for 2 years and was arrested and jailed again for 4 months for violating an externment order in 1944.
After independence, Annapurna spent her time in social service and worked for the empowerment of women and children. She also participated in the Bhudan movement of Acharya Vinoba Bhave. She set up a school in Raigarh district for tribal children. Annapurna Maharana passed away on the 31st of December 2012 at a home in Cuttack, Odisha. We salute the spirit and love for the nation of this great freedom fighter. Tu Gandhi Habu.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
श्रोताओं, अब आपको देंगे खेल के मैदान की हलचल. सबसे पहले बात कर रहे हैं क्रिकेट फील्ड की, जहां न्यूजीलैंड ने भारत के साथ 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है. मुंबई में आज खेले गए तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रनों से हराया. जीत के लिए 147 रन के जवाब में भारत की टीम 121 रन पर ही सिमट गई. इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत को पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट और दूसरे टेस्ट मैच में 113 रन से हराया था.
India's Malvika Bansal stormed into the final of the Hilo Open Badminton Tournament's women's singles competition. She will face Denmark's 7th seed Mia Blattfeldt in Saarland Hall, Germany, in the title clash.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है. तो अनीता, आज सबसे पहले किसे याद कर रहे हैं हम?
Today is the birth anniversary of Professor Dinesh Chandra Sen. He was a Bengali writer, educationist and researcher of Bengali folklore from the Indian subcontinent. He was the founding faculty member and the Ram Tanu Lahiri Research Fellow of the Department of Bengali Language and Literature of the University of Kolkata. In the year 1909-13, he was a reader in the newly founded Department of Bengali Language and Literature of the University of Kolkata, and in 1913, he became the Ram Tanu Lahiri Research Fellow in the same department. In the year 1921, the University of Calcutta conferred on him the Doctorate of Literature in recognition of his works. In 1931, he received the Jagatarini Gold Medal for his contribution to the Bengali literature. He worked on collection and compilation of the Bengali folklore. Along with Chandrakumar Day, he published Manmohan Singh Geetika, Ballads of Manmohan Singh. a collection of 21 ballads in Bengali, Bangla, Bhasha or Sahitya in 1896. Teen Bondhu, Three Friends came out in 1904. Ramayani Katha, Tales of Ramayan, was published in 1904. Behula, a folk tale, in 1907, and Shruti Fulara in 1907.
आज जयंती है पृथ्वीराज कपूर की, जिन्हें हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय का इतिहास पुरुष कहा जाता है। इनका नाम ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रोबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग चार दशकों तक सिने दर्शकों के दिलों पर राज किया। और अनिता, जब पृथ्वीराज कपूर की फिल्मों का जिक्र आए और मुगले आजम की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना हम इसी फिल्म का एक डायलॉग सुने।
ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्ताक।
सहे नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी।
दरोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है।
अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा।
और तुम कर भी क्या सकते थे,
एक अजीम शान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे जब्त की हद मुकर्रर करनी होगी।
अगर तुम्हारी आरजू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
पृथ्वीराज कपूर वाज एसोसिएटेड विद इब्टा एज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर्स एंड एस्टैब्लिश्ड द पृथ्वी थिएटर्स इन द ईयर 1944 एज अ ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी based in Bombay, now Mumbai. The Government of India honored him with the Padma Bhushan in 1969 and Dada Saheb Phalke Award in the year 1971 for his contributions towards Indian cinema. Today is the birthday of the Indian actress, producer and writer who primarily appears in Hindi and Marathi films. We are talking about Sonali Kulkarni, born on this day in 1974. Kulkarni is considered as one of the highest paid actresses in the Marathi cinema and is a recipient of several accolades, including a National Film Award, four Filmfare Marathi Awards and four Maharashtra State Film Awards. She has worked in over 70 films, both experimental and non-experimental, in addition to acting in few non-Indian films also. Let's listen to a snippet of a song picturized on her from the film Dil Chahta Hai.
जो तुम्हारे ख्वाबों में है बसी वो हसीन मूर्ति प्यार की मिलेगी तुम्हें कभी ना कभी, जरा देखो यहाँ चलो ढूंढते हैं हम तुम कहीं वो परी वो हूर वो
She is regarded as one of the most versatile Marathi actresses. At the age of 18, she made her cinematic debut in the Kannada film Chaluvi in 1992. Later, she debuted with Mukta in 1994. This was in Marathi. This was followed by critical praise with Dogi, 1995, and Daira, which came out in 1996.
आज लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर जी की जयंती है। ये हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनकी जोड़ी संगीतकार प्यारेलाल के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से मशहूर है। अपने करियर की शुरुआत में इन्होंने आनंद के सहायक के रूप में मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और दिल तेरा हम भी तेरे जैसी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि फिल्म पारसमणि ने इनकी किस्मत बदल कर रख दी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मिलन, शागिर्द, इंतकाम, दो रास्ते, सरगम, हीरो, नाम, तेजाब, खलनायक जैसी कई फिल्मों के लिए संगीत दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता।
टुडे इज आल्सो द बर्थडे ऑफ द इंडियन प्लेबैक सिंगर एंड फिल्म एक्ट्रेस मोनाली ठाकुर। शी इज द रिसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग अ नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द सॉन्ग मोह मोह के धागे फ्रॉम द फिल्म Dam Laga Ke Haisha, which was released in 2015, and a Filmfare Award for the song Sawar Lu from the film Lutera. We are listening to a snippet from that song.
Isi bahane kyun na main bhi dil kaha
आज अमर्त्य सेन का जन्मदिन है। अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा दी है। इन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर कई पुस्तिकाएं भी लिखी और अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्रोताओं, इसके साथ ही इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अनिता आनंद को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।